శ్రీకృష్ణాయ వాస్. ఈ 58 నంబర్ కా శ్లోక్ చల్ రహా హై. ఉస్మే జో ప్రశ్న కియే థే, స్థిత్ ప్రజ్ఞస్య కా భాషా, సమాధిస్తస్య కేశవ, స్థిత్ భీ కిం ప్రభాసేత, కిం ఆసీత్. అశ్భూయి ధాతు హై సంస్కృత మే. స్థిత్ ప్రజ్ఞ బైఠతా కైసే హై, ఉస్కే లియే దృష్టాంత దియా, కచ్వే కే జైసే బైఠతా హై. कछुए की खासियत है वो जितनी खुशी से पानी में रहता है उतनी खुशी से जमीन में रहता है. साधना निर्बाध गति से उसी व्यक्ति की चल सकती है जिस व्यक्ति की मनस्थिति अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक जैसी हो. इसलिए किम आसीत का उत्तर है ये, जो तीसरा उत्तर है ना, किम आसीत. तो कछुए की तरह वो बैठता है. अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया होगा, कछुए को जब मारते हैं ना, कभी आप मारने के लिए उसको पत्थर फेंको उसके ऊपर, तो वो न तो आपके ऊपर हमला करेगा और ना वो भागेगा. वो क्या हो जाता है? सिकुड़ सिकुड़ जाता है. समझने जैसी बात है. यदि वो भागेगा तो जाएगा कहां? कहां जाएगा? नारद जी ने भागवत में कहा कि मैं अयोध्या गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, सब जगह पंडों ने पीछा किया मेरा, कितने कुओं में नला डाला मेरे को, नारद को जुखाम हो गया उसमें, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के है? क्या करूं? भाग को भाग के जाओगे तो कहां जाओगे? सब जगह लुटेरे पहले से पहुंचे हुए हैं और आक्रमण करोगे तो शक्ति दूसरे को नष्ट करने में खत्म हो जाती है. प्रायः आप देखो, आदमी की शक्ति दूसरे को बर्बाद करने में ही लगती है, अपने विकास में नहीं लगती. एक जिसने एप्पल फोन बनाया उसके बारे में मैंने पढ़ा. वो कभी आपको मालूम होगा नहीं होगा, भगवान जाने, मालूम भी होगा, प्रेम प्रेम में रहते हो तो और कुछ मालूम हो नहीं हो ये तो जरूर मालूम होगा. वो ये अल्मोड़ा के पास एक आश्रम है, वहां एक महात्मा के पास में वो जाया करता था, नीम करोड़ी बाबा के नाम उसका बड़ा बहुत बड़ा आश्रम है उसका. जीवन में एक बात है, शक्ति को मनुष्य को अपने विकास के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहिए, दूसरे के विनाश के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए. जो व्यक्ति शक्ति का उपयोग अपने विकास के लिए करता है वो व्यक्ति कहीं न कहीं पहुंच जाता है, लेकिन जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे के विनाश के लिए करता है वो स्वयं कहीं तो नहीं पहुंचता, स्वयं तो नीचे गिरता है, दूसरे के रास्ते पे भी प्रतिबंधक बन जाता है. जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है ना, योग दर्शन में एक दृष्टांत दिया है, वो व्यक्ति कैसा होता है मालूम है आपको? जैसे आंख के अंदर कोई कंबल का ऊन, ऊन होते हैं ऊन, ऊन का कोई धागा घुस जाए अंदर के अंदर और वो ऐसा चुभता है, जब तक निकल ना जाए तब तक आंखें कुछ देखने के लिए तैयार नहीं. जीवन में बेचैनी ऐसी है, जहां व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है वहां पर व्यक्ति, अब हिंदी में तो कहावती है कि आंखों में खटकने लगता है, असली में दृष्टांत यह है कि जैसे आंख के अंदर ऊन चली जाती है ना ऊन, तो फिर जब तक निकलती नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, आंखें देखना बंद कर देती हैं, छोटी सी आंखें हैं, इनसे हम इतनी बड़ी दुनिया देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक टुकड़ा चला जाता है तो कितनी मुसीबत हो जाती है। आपको मालूम होगा उस आदमी को कहीं जहां रहता था वहां से उसको हटाया, फिर उसने एक नई चीज दुनिया को दी। दूसरी बात क्या होती है ना, साधक को हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कभी आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया था, जब आप बहुत उपयोगी होते हो तो आपको सब अपनाने के लिए तैयार होते हैं, बहुत उपयोगी होते हो। आज हम ये विचार नहीं करते हैं कि ये फोन जिसने बनाया वो गौ का मांस खाता है, ये फोन जिसने बनाया वो निष्ठावान है चरित्रवान है कि नहीं है। नहीं, उस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज बना दी जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो जीवन जितना उपयोगी होता है उतना स्वीकार्य होता है, उतना उसको लोग स्वीकार करते हैं। आप हिसाब किताब रखते हैं, बहुत अच्छा सीए है, आप मारवाड़ी हैं, आप गुजराती हैं, लेकिन वो यदि मारवाड़ी सीए गलत करेगा तो आप बोलोगे नहीं रखो दूसरा, भले ही मुसलमान है तो क्या हुआ, क्यों भाई? वस्तु उपयोगी है और वस्तु का सबसे बड़ा धर्म है वस्तु की उपयोगिता होना। हमने कुछ ऐसी चीज नहीं दी जो उपयोगी होगी। हिंदू धर्म के अंदर कभी कभी हमारे पास आते हैं किस किस के कागज आते हैं, सब अपने तो स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है प्रति, लेकिन जब कभी आते हैं कभी बात करते हैं, फलाने पर्षद फलाना पर्षद आते हैं, हम कहते हैं हम तो इनको इनमें रुचि नहीं हमारी है। हम एक बात कहते हैं उनसे, ईसाइयों ने इतनी स्कूलें बनाई हैं, खड़ा टीका लगाने वाला वैष्णव भी उसी स्कूल में अपने बच्चे को भेजता है, क्योंकि उसने एक ऐसी उपयोगी चीज दी है कि आप विचार नहीं करते वहां पे। तो साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबके लिए उपयोगी क्या है। आप छोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको, योग की बात है, अभी बोला योग दिवस मनाएंगे, कितने देशों में मनाएंगे वो ठीक अलग बात, मुद्दा अलग हो गया, क्योंकि उसकी उपयोगिता मालूम पड़ती है, शरीर स्वस्थ दिखता है उससे, आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ दिखती है उससे। लेकिन धर्म के दायरे में आकर के हम लोग कुछ ऐसी उल्टे सुलटे काम करते हैं कि जो बुढ़िया रोज सुबह प्रेमपुरी में आती होगी उसका आचरण यदि घर में उसकी बहू देखती है तो उसकी बोलती मुझे नहीं जाना प्रेमपुरी आश्रम में, यदि जाकर के फिर ऐसे ही मन की स्थिति रहनी तो जाके क्या करना है फिर, और यदि उसकी स्थिति अच्छी होगी तो वो बोलेगी नहीं मेरी बहू आएगी तो मैं भी जरूर जाऊंगी। परिणाम को देख करके प्रवृत्ति होती है। तो कछुआ जो है, जो कछुए का दृष्टांत दे रहे हैं, ये समझना थोड़ा सा बात, किम आसीत का दे रहे हैं, वो अपनी शक्ति का उपयोग न भागने में लगाता है और न अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे के ऊपर आक्रमण में लगाता है, और प्रायः व्यक्ति की शक्ति या तो भागने में जाती है या तो आक्रमण में जाती है। आप ये ध्यान रखना, थोड़ा सा समस्या आती है हम लोग छोड़ते हैं, हम भी सोचते हैं भाई छोड़ो यार अपने को क्या लेने देने का। श्री कृष्ण कहते हैं वो जो साधक है उसकी स्थिति कैसी होती है, यदा संघरते चायम, दो चीज है संस्कृत भाषा में, सम जो है वो उपसर्ग है, एक हरते और सम हरते। हरते हरते किसको बोलते हैं ये मालूम है आपको? जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया, उसका नाम है हरण हरते, और पतंजलि ने इंद्रियों का निग्रह करके और आत्मदर्शन किया, उसका नाम है समहरते। वश में करना, इंद्रियों के वश में जब हम होते हैं तब इंद्रियां हमारा हरण करती हैं, और इंद्रियां जब हमारे वश में होती हैं तब उसका नाम होता है समहरते। सम मैंने परमात्मा, असली में सम का अर्थ परमात्मा नहीं, सम का अर्थ सम्यक, जिस चीज के लिए रोकना है उस चीज के लिए रोका, इंद्रियों को रोका और रोकने के बाद परमात्मा में लगा दिया, उसका नाम है समहरते। यदा समहरते चायम कुर्मो, और कुर्म जो है ना कछुआ हो गया, भगवान को याद आ गई किसकी, ऐसा बोलते हैं देवताओं की और दैत्यों की आपस में लड़ाई हो गई। देखो लड़ाई होने के बाद जीतने की इच्छा सबकी होती है, संघर्ष करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जीतना चाहता है, संघर्ष का उद्देश्य ही जीतना है। फिर कहा कि ऐसा करो समुद्र का मंथन करो, विचार करना थोड़ा सा, ये मंद्राचल जो है ना ये क्या चीज है मालूम है, यही है सबसे बड़ा विवेक, मन। लेकिन मंथन जब करते हैं तो मंथन का कोई आधार होना चाहिए, बिना आधार के यदि आप मंथन करते हैं तो जिस साधन के द्वारा आप मंथन करते हैं वही साधन धीरे धीरे डूब जाता है, खत्म हो जाता है। मंथन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना आधार के जो मंथन होता है उस आधार से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। विचार किया कि आधार किसको बनाया जाए, तो कहा कि विचार का आधार परमात्मा होना चाहिए। आप ये उपनिषदों का परमात्मा ऐसा परमात्मा नहीं है जैसा अपने लोग समझते हैं, उपनिषदों का परमात्मा शंकराचार्य लिखते हैं अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, उपनिषदों का परमात्मा अस्तित्व है, अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। उपनिषदों का परमात्मा न राम है न कृष्ण है, क्या राम और कृष्ण के पहले ये धरती नहीं थी? कितने वर्षों से धरती है, और बल्कि बढ़िया चलती थी उनके आने के पहले भी, ऐसा नहीं समझना हम नास्तिक हैं। कृष्ण ने कितनी कोशिश करी यहां आने के बाद, कृष्ण जब थे तो कौन सा युग था? द्वापर। कलयुग देके चले गए। राम आए कौन सा युग था? द्वापर देके चले गए। एक एक टांग धर्म की काट के चले गए। कारण क्या है? समय की मर्यादा में जो भी वस्तु पैदा होगी उस वस्तु और उस व्यक्ति के ऊपर समय का प्रभाव होगा। और जिस व्यक्ति और जिस वस्तु पे समय का प्रभाव होगा उस वस्तु को उस व्यक्ति को एक बार धरती छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सत्य है। और हम कितने भी बड़े भ्रम में जी लें लेकिन जीवन में आदमी को सत्य को स्वीकार है और सत्य को स्वीकार करोगे तभी सुखी रहोगे। बाद बाकी सुखी रहने का कोई उपाय नहीं है दुनिया के अंदर। इसलिए बता रहे देखो संगरते कुर्मो अंगानी। अंग का मतलब साधन है। साधन है कुर्म के अंग साधन क्या है? आंख कान नाक हाथ पांव यही साधन है कि नहीं है? आप कहीं भी सफर करते हैं लेकिन गाड़ी आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। जितनी स्पीड पे चलाओ उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन नियंत्रण नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो उसका साधन व्यक्ति के नियंत्रण में होने चाहिए, नहीं तो बड़े से बड़े विवेकवान बुद्धिवान व्यक्ति भी गलत काम कर बैठते हैं क्योंकि साधनों पे नियंत्रण नहीं रहता। आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। ये व्यक्ति का स्वाभाविक है। आदमी की एक खासियत है वो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत भगवान बनना चाहता है। मैं बहुत बड़ा सबसे बड़ा बनना चाहता है। लेकिन जिन साधनों से हम छोटे बनते हैं उन साधनों के प्रति हमारा प्रेम बना रहता है। जब तक आप शरीर और इंद्रियों के साथ में तादात्म्य रखते हैं एकता रखते हैं तब तक आप भगवान नहीं हो सकते। भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जिन साधनों के माध्यम से आपको पहुंचना है सबसे बड़ी बात है उन साधनों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। मैं कल आपको एक इशारा कर रहा था थोड़ा सा। महाभारत का प्रसंग है। कृष्ण जब 4 बजे उठते हैं तो सबसे पहले अर्जुन के घोड़ों की मालिश करके आ जाते हैं। विजय हय तनुर मार्जने सावधान। विजय नाम अर्जुन का नाम है। हय मैंने घोड़े, तनु मैंने शरीर, मार्जन मैंने मालिश। फिर वो घोड़े ऐसे हैं कि कृष्ण के इशारे पे अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन उसका कारण घोड़े नहीं, उसका कारण कृष्ण है। तो बड़ी बात है। यही तो खासियत है। तो साधनों के ऊपर जो नियंत्रण है वो साध्य प्राप्ति का उपाय है। हम लोग साध्य प्राप्ति के लिए जबरदस्त कोशिश करते हैं। लाखों रुपया खर्चा करेंगे, ये करेंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन साधनों को साधन करने में विश्वास नहीं रखते। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं चलते चलते महाराज मंदिर जाते जाते जूते घिस गए लेकिन कुछ हुआ। हम भी बोलते हैं हो जाएगा, और क्या बोले हम भी। इसलिए बोलते हैं देखो कुर्मो अंगानी व सर्वसा, सर्वसा शब्द का प्रयोग भगवान कहते हैं सब तरफ से, एक तरफ से नहीं सब तरफ से सभी प्रकार से। अब मंत्राचल का मंथन प्रारंभ होता है, धीरे धीरे वो डूब जाता है। जब वो डूबने लगता है तब भगवान आधार बन करके नीचे आ जाते हैं। समझने जैसी बात है। जब चिंतन का कोई आधार होता है फिर जीवन से रत्न निकलते हैं। यदि उसका कोई आधार नहीं है, आप कभी विचार करके देखो, बहुत सारे लोग कभी कभी बोलते हैं ये धरती किसने बनाई होगी, ये आकाश किसने बनाया होगा, ये चंदा मामा किसने बनाए, जिस चंदा मामा के लिए कृष्ण भी रोते हैं। किसने उस चंदा मामा को बनाया, गजब के बनाए हैं। आप लोग तो उपनिषद पढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं बृहदारण्यक में एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसौ धात। हे गार्गी कभी आकाश में देख, ये लटके हुए तारे, चलता फिरता सूर्य, ये अपनी लाचारी का वर्णन करते हैं। देखा नहीं तुमने, निर्णय सागर का पंचांग है पंडितों ने निकाला हुआ, फलानी तारीख को ग्रहण लगेगा, उस दिन ग्रहण लगना ही है, पंडितों ने 20 महीने पहले बोल दिया। अब सूर्य भगवान को बिचारे को कहीं बीच में कुछ बीमारी उमारी हो गई तो क्या होगा फिर है? तुम्हारी तो बनी बनाई टिकटें कैंसिल हो जाती हैं, और उसको तो उसी दिन उसी टाइम पे पहुंचना है। कहीं कहीं पंचांगों में तो उसका एक अंश भी दिया जाता है कि इतना भाग ढकेगा और इतना भाग नहीं ढकेगा। तो पंडित के कहने से हो रहा है ऐसा, वो इतना भाग ढक रहा है और इतना भाग खुला दिखाई दे रहा है, ये ऐसा इतना सूर्य ढका हुआ है, वो पहले ही फोटो दे दिया उसमें। वो तो बेचारा 5 रुपए के लिए इधर से उधर भाग रहा है, उसको क्या मालूम है। लेकिन है कोई ऐसा जिसको उसकी गति का बोध है। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसौ धाता। गार्गी भी कोई सामान्य तो नहीं थी, कई जन्मों का पुण्य होगा तब, क्योंकि ईश्वर में मन लगता ही तब है जब ऐश्वर्य की पोल पट्टी मालूम हो जाती है। कभी आप अपने पोते के साथ में जाओ कहीं, और जादूगर जो है मुंह से 100-100 रुपए की नोट निकाल रहा है तो तुम्हारे मन में कुछ विकार पैदा नहीं होता वो देख करके। तुमको मालूम है कि अभी जैसे ही जादू का खेल खत्म होगा 2-2 रुपए मांगेगा, वो भिखारी है। लेकिन जो कोई छोटा बच्चा होगा वो तो लगता है बाप रे बाप, इसमें तो कमाल कमाल की बात है, ये दिन भर निकालता रहे तो ये तो कहां से कहां पहुंच जाएगा, हर रुपए की जगह फिर डॉलर निकालने लग जाए।
लेकिन आपका उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, आकर्षण नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि उसके ये जो है एक छलावा है। एक माया का भी इतना बड़ा छल है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर इंद्रियों का निग्रह पूर्ण रूप से नहीं है, हमें इंद्रियों का सुख चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कुरुमो अंगानिव सर्वसा। अच्छा, आगे क्या बताते हैं? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, दो चीज हो गई। देखो योग दर्शन में एक बात लिखी है, दो प्रकार के साधक होते हैं। एक भव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जैसे महाराज भरत हैं, ये उपाय प्रत्यय हैं। इन्होंने उपाय कर करके और फिर संसार की असारता को समझा, इसको बोलते हैं उपाय प्रत्यय। और सुखदेव जी महाराज भव प्रत्यय हैं। नचिकेता भव प्रत्यय है।
नचिकेता को किसने बताया संसार में कुछ सार नहीं है? कभी सोचा?
जो मौत आदमी का सब कुछ छीन लेती है, वो मौत उसको सब कुछ देने वाला बन गई। लेकिन ये भी हैरानी की बात है, उस आदमी ने कुछ लिया नहीं। उसने सोच लिया कि मौत जो भी देती है उसमें शर्त यह है कि कुछ समय के बाद वो छीन लेगी। ठीक है, एक साल, दो साल, बीस साल, पचास साल, बात खत्म। कहां है? मौत छीन लेती है तो निशान भी नहीं रखती। कभी प्रेमपुरी आश्रम में देखते स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, बड़े बड़े पुराने लोग, आज कहीं छाप भी नहीं दिखती, कोई निशान भी नहीं दिखते। मौत तो पकड़ के ही कुछ ऐसा ले जाती है कि कुछ निशान पीछे छोड़ के नहीं जाती है। नचिकेता ने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो तू देता है वो छीन लेता है, नियम ही यही है। जवानी मिली कहां चली गई? काले बाल सफेद कैसे हो गए? कुछ किया आपने? सफेद को काला करने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी करके भी क्या फायदा है? नचिकेता ने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ। इसका नाम है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य। संपूर्ण इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ मैंने विषय से अलग कर दिया। विषय से क्यों अलग कर दिया? तो विषय शब्द का अर्थ ब्रह्म सूत्र की टीका है भामती, भामतीकार करते हैं वाचस्पति मिश्र, उसमें विष्णवंती अवबंधनती स्वेन रूपेण निरूपणीय कुर्वंती इति विषया। विषय का अर्थ क्या है? पहले आदमी को प्रेम से बुलाता है, प्रेम से बुलाता है, बुलाने के बाद बांधता है, और बांधने के बाद पीटता है। अब तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हो गई? अब घर में गाली भी देगी तो शाम को वहां पहुंचना ही है, क्या करोगे? अभी बांधे बगैर पीटती नहीं है। विषय में सुख है कि नहीं? असली में विषय शब्द संस्कृत में सिंह बंधने धातु से बनता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, अर्थ मैंने विषय। जैसे तमाकू सुख देता है कि नहीं देता है? आपको क्या लगता है तमाकू सुख देता है कि नहीं देता है? हमने देखा, महात्माओं में भी देखा हमने, गृहस्थ की बात नहीं करते हैं, जिसको तमाकू खाने की आदत है ना, एक दो लोगों को हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आप तो और गुरु घंटाल हो, लाके भी देते होंगे, लो महाराज। हमने कहा यार
इतना अभी बढ़िया रसगुल्ला खाया और तू ऊपर से तम्बाकू खा रहा है। उसने बोले तेरे को क्या पता है, इसका स्वाद ही कुछ और है, किसका तम्बाकू का। अब रसगुल्ले के ऊपर और खीर के ऊपर अब फिर आप तम्बाकू खाओ, ये हम कह रहे हैं। लेकिन जिस जो खाता है जिसको रस आता है उसको आप पूछो जरा इसका, तो तम्बाकू भी सुख उसको देता है ना, जो तम्बाकू को बोलता है कि तम्बाकू तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता, झूठ नहीं सच्ची बात बोले कि तम्बाकू जैसे ही देखे तड़फन हो। कभी मंदिर के बाहर आने पर तुम्हारे मन में ऐसी तड़फन नहीं होती जैसे तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू मिले नहीं सुबह से, और सड़क में कोई झाड़ू मार रहा हो तम्बाकू बना रहा हो तो उसको देख के उसकी इच्छा हो जाती एक बारी मांग लूं इससे मैं। विषय बांध देता है आदमी को, सिंह बंधने से विषय शब्द बनता है संस्कृत में, बांध देता है। और जो बंध जाता है उसको बोलता है मैं सुख देता हूं, लेकिन सुख के बदले मौत भी दे देता है। वो उसका परिणाम है, उससे फिर उसको कोई मतलब नहीं, परिणाम तो फिर अलग हो गया, फिर परिणाम उसके। इसलिए भगवान कह रहे हैं जरा समझने जैसी बात है। अच्छा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, क्योंकि इंद्रिय को विषय से अलग करने के लिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति होती है। ज्ञान शक्ति क्या है तो आपको बता देता हूं जरा समझ। महाभारत का श्लोक है, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति, धर्म जानता हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान को क्रिया में नहीं ला सकता। जानाम्य धर्मम नचवे निवृत्ति, जानता हूं ये बुरा है। तो जब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों के ऊपर आपका नियंत्रण होता है उसका नाम है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप जानते हैं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप क्रोध कर बैठते हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में समन्वय है, जैसे सुखदेव जी महाराज का था, जो पत्थर फेंकते थे उनको श्राप नहीं दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का आपस में क्या है? तालमेल है। और जिंदगी में जब तालमेल होता है तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, और तालमेल ना हो तो बढ़िया से बढ़िया काम बिगाड़ सकते हो। तो बिगाड़ने में विश्वास रखते हो कि बनाने में विश्वास रखते हो? तो तालमेल रखो थोड़ा, किसमें? ज्ञान और क्रिया शक्ति में। यदि ज्ञान कहता है ये गलत है तो उस तरफ क्रिया होनी नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। वो तो बड़े बड़ों का नियंत्रण नहीं होता। महाभारत में लिखा है जब मैदानव को बचाया ना उन्होंने, अर्जुन ने और कृष्ण ने, तो फिर हस्तिनापुर का राज्य बनाया। जब दुर्योधन को जल में थल और थल में जल दिखने लग गया तो द्रौपदी बहुत जोर से हंसी। हंसने की क्या बात थी? अरे बनाया ही ऐसा है कि जल में थल दिखे, थल में जल दिखे, उसमें दुर्योधन की क्या गलती है? दुर्योधन की कोई गलती नहीं थी। महाभारत आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो दुर्योधन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बना ही ऐसा है। यदि तुम जाते तो क्या करते? हम जाते तो क्या करते? जब जल में थल दिखेगा तो धोती तो ऊपर उठाएंगे आदमी। जोर से हंसी। अब वो
परमात्मा की बनावट पे हंसी या दुर्योधन की बुद्धि पे हंसी? दुर्योधन की बुद्धि क्या, बुद्धि तो यही कहेगी यदि पानी है तो कपड़े ऊपर उठाओ भाई थोड़ा सा। नहीं, लेकिन आदमी को दूसरे के पतन पे जरूर हंसी आती है। दूसरा जब गिरता है तो जरूर हंसता है, लेकिन उस बेवकूफ को यह मालूम नहीं है कि जो दूसरे के गिरने पे हंसते हैं वो कहीं ना कहीं अपने गिरने की व्यवस्था बना लेते हैं। फिर तो कहीं एक उपक्रम प्रारंभ हो गया है फिर तो। इसलिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का जो समन्वय है उसी का नाम है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से, नहीं तो स्वाभाविक रूप से चली जाती हैं इंद्रियां विषयों में, स्वाभाविक रूप से चली जाती हैं। लेकिन जब आपका समन्वय होगा तब आपको ये लगेगा कि नहीं ये नहीं बात। अरे लिखा है उपनिषदों में भोक्ता भोगाम जहाति ये नाम, हर बार सोचता है कि बार बार भोगा। वही नचिकेता ने कहा महाराज न वित्ते न तर्पणियो मनुष्या, हे महाराज आज तक पैसे से किसी को संतोष नहीं हुआ, मुझे कैसे हो जाएगा, नहीं हुआ। मैं तो आपके पास में आया हूं तो कुछ ऐसी चीज लेके जाऊंगा जो कुछ अलग हो, तो इसलिए बता दिया इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य। अच्छा प्रज्ञा तस्य प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब देखो जो उपाय प्रत्यय होते हैं उनको बहुत साधना करनी पड़ती है। भागवत जी में लिखा है तस्मिन्नांतरजले वारिचर प्रसंगात, सौवरी ऋषि नदी के जल में बैठ करके साधना कर रहे हैं। किसकी? संयम की साधना कर रहे हैं, जबरदस्त साधना कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा दृश्य देखा, तस्मिन अंतरजले वारी चरप प्रसंगा, देख लिया उन्होंने, उनके चित्त में ये बात आई कि चलो भाई शादी कर लो। आप लोगों के मन में नहीं आती बात ऐसी विषय सेवन की बात, समाधि तोड़ के चल दी। इसका नाम है उपाय प्रत्यय। उपाय करने वाला आदमी बार बार गिरता है, और जो भव प्रत्यय होता है उसके लिए कठोपनिषद में लिखा है सरमा सरथा सतुर्या, वो बोलता है यमराज कह रहा है ये दुर्लभा मनुष्य लोके तान वृणीस्व, ऐसे भोग यार धरती में किसी ने भोगे नहीं है। तो उसने कहा बूढ़े हो जाएंगे तो फिर? बोले ऐसा वरदान देता हूं जब तक जवान रहे तब तक रहना चाहे तो रहे जवान, क्या करेंगे। सुना है शास्त्रों में महाराज यदु ने किसकी उसकी उम्र, ये याति ने जो है अपने बच्चों की उम्र ले लिया, ये ले लिया, कोई संतोष तो होता नहीं है। वो है भव प्रत्यय। जन्मजात उसकी साधना इतनी प्रबल है कि विषयों के प्रति आकर्षण है ही नहीं, और जो उपाय प्रत्यय होते हैं हम लोग हैं बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पांव डगमगा जाते हैं, कहीं मान प्रतिष्ठा इसमें उसमें बेशकीमती जिंदगी को फालतू की चीजों में जो है ना खत्म कर देते हैं। ये उपाय प्रत्यय है, उपाय प्रत्यय तो नहीं है वो जो फालतू करता है, वो तो ऐसे नालायक है। अच्छा इनका क्या होता है? तो इनका इंद्रिय निग्रह जो है वो स्वाभाविक होता है, इसका भव प्रत्यय वालों का। तो
जो कछुआ है ना, तो कछुए का इंद्रिय निग्रह जो है वो स्वाभाविक है, उसको बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आप थोड़ा सा फेंको कुछ भी, एकदम इंद्रियों को सिकोड़ लेगा वो, एकदम बट्स पर चुप हो जाएगा। लेकिन जो उपाय प्रत्यय होते हैं उनको विचारों को सिकोड़ते सिकोड़ते कितनी बारी फैल जाते हैं, कितनी बार परेशान हो जाता है वो। इसलिए भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जब इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक हो जाए, जैसे नचिकेता का है, नचिकेता ने एक निश्चय कर लिया कि यमराज जो भी हमें देगा उसमें मौत है। और मैंने आपको कई बार बताता हूं, कितनी भी कीमती कोई चीज हमें दे, लेकिन यदि हमें पता हो उसमें टाइम बम रखा है, हम शायद नहीं लेंगे उसको। लोगे 10 करोड़ की गाड़ी दो तो लोगे क्या? बोले बैठते ही फटेगा। तो दुनिया में ऐसा ही है। विचार सागर में एक दोहा आता है, ब्रह्म लोक लो भोग चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताही कहत बैराग। वेद के अर्थ को जानने वाले मुनि लोग ये कहते हैं, यहां से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जितने भी भोग हैं सबके अंदर टाइम बम फिट है। जो साधक प्रकृति का व्यक्ति है वो उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए दो चीजें हो गई भैया, एक चीज हो गई उपाय प्रत्यय और एक हो गई भव प्रत्यय। तो ये जो है अर्जुन जो है उपाय प्रत्यय है, क्या है? तो उसको कृष्ण की लकड़ी की सहारे की जरूरत है। हम लोग सब उपाय प्रत्यय हैं, हम लोगों को प्रेमपुरी के सत्संग के सहारे की जरूरत है। ये सहारा जब हमको मिलता है, लिखा है भागवत में, धेयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम, लिख पड़ा श्लोक कभी? हाँ, उसमें लिखा है भगवान, धेयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्दी पोतम। कभी आपने देखा होगा नर्मदा में जब बाढ़ आती है ना, तो बड़े से बड़ा तैराक डूब जाता है, मगरमच्छ बह जाते हैं, तुम्हारी तो बात ही क्या करनी है, बड़े बड़े मगरमच्छ किनारे लग जाते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को तो बात ही क्या है। लेकिन कभी आपने सोचा, बड़े से बड़ा तैराक डूब जाए लेकिन एक छोटा सा बच्चा वो तैरना ही नहीं जानता, लेकिन ये नौका का सहारा यदि वो ले लेता है तो बिना प्रयत्न के भी वो पार हो जाता है। लेकिन सहारा किसका चाहिए? वो नौका का जो सहारा है ना, वही सत्संग है, बहुत बड़ा सहारा है। असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम्, असार रूपी इस संसार में चार ही सार हैं, काश्याम वासः, काशी में वास मिल जाए। ये प्रेमपुरी आश्रम ही काशी है, काशी ये इसी का नाम है। काश्री दीप्तों से काशी शब्द बनता है, काश्री दीप्तों। और उस काशी में जो है 5 कोष हैं, तो ये देखो, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष है,
विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और आनंदमय कोष, यही है। सबसे भाग्य की सबसे बड़ा सौभाग्य है इसमें वास करना। हाँ, असार रूपी संसार में सारमेतत् चतुष्टयम् काश्याम वास, काशी का मतलब ये जो शरीर है पांच कोष वाला, इसमें वास करना। काश्याम वास सताम संगः, फिर सत्संग प्राप्त हो जाए, किसी सत्पुरुष का साथ प्राप्त हो जाए, संत का साथ प्राप्त हो जाए। संत समझते हैं आप किसको बोलते हैं? वेदों में संत की व्याख्या किया गया मालूम है? ये बोलना आजकल तो बड़ा मुश्किल है। संत रामपाल नाम सुना कभी? बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। कितने कितने संत हो गए। संत का अर्थ वेदों में किया है, अष्टि ब्रह्मेति चेत वेदः संतम एनम ततो विदुर इति। संत का अर्थ ही होता है जिसे पता है जो मैं कर रहा हूं उसे कोई देख रहा है। नहीं द्रष्टोर दृष्टे विप्रिलोपो विद्यते, कुछ छुपा नहीं है जो देख रहा है मेरे सब काम को। जब आपको यह निश्चय हो जाए तो आपके जीवन में संतता अपने आप आ जाती है। कोई बुरा काम करते कोई बैठा हुआ हो तो नहीं करता है। अब सीसीटीवी कैमरे जब से लग गए चोरी कम तो नहीं हुई, चोरी कम हो गई, लेकिन चेहरे पे नकाब लग गए। समाज में बुराई हमेशा कुछ रहती जरूर है, लेकिन वो अपना रूप बदल देती है, अपने तौर तरीके बदल देती है। समाज का अस्तित्व उसी पे टिका हुआ है। काश्याम वासः सताम संगः, सतपुरुष का साथ होता है। गंगाम्बु, गंगाम्बु गंगा का अम्बु माने गंगा जल, गंगा जल पीने के लिए मिल जाए। तो तुलसीदास जी ने उसका निराकरण किया है, राम कथा सुरसरी धारा, भगवान की जो कथा है वही गंगा जल है। और गंगाम्बु शिव पूजनम, और भगवान शिव का पूजन हो जाए। शिव कौन है मालूम है आपको? फिर आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम, आदि शंकराचार्य ने लिखा है। सुबह उठ करके थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर के अंदर आने का भाग्य है, इसलिए इंद्रिय निग्रह जैसे कछुए का स्वाभाविक है, इसी प्रकार से हमारा भी स्वाभाविक बनना चाहिए। लेकिन पहले पहले क्या है, उपाय प्रत्यय होता है। क्या होता है? उपाय प्रत्यय। कोई कोई आदमी ऐसा होता है, मैंने देखा है, हमने कहा लोग बोलते हैं तुम हर बात में गाली देते हो, ऐसा क्यों करते हो? पूछा कौन साला कहता है मैं गाली देता हूं? अभी हमने कहा तुम जाओ, अभी तुमको हम कोई सुधार नहीं सकता, भगवान भी नहीं सुधार सकता। वो क्या है? वो भाव प्रत्यय है। उसके लिए उसको कोई उपाय उपाय करने की जरूरत नहीं है, वो उसका स्वाभाविक हो गया। ऐसे उपाय प्रत्यय लोग हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग ढंग के लोग होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से कितने श्लोक हो गए मालूम है आपको? 58 श्लोक हो गए, 58 श्लोक हो गए। अब इसके बाद जो है 59 श्लोक की चर्चा कल करेंगे आप।